ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலைய அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜகத் நியந்தா ஜகதாதார் पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम अहितु की कृपा के साथ ईशावास्य उपनिषद के द्वारा विचार कर रहे थे कर्म और उपासना. अंधतम प्रवशन्ति ये विद्या उपासते विद्या उपासते ततो भूय इवते तमो यह वो विद्या था. वह जो लोग अविद्या रूपी कर्म की उपासना करते हैं अथवा जो विद्या की उपासना करते हैं वह अंधकार में प्रवेश करते हैं. मानो जो लोग केवल कर्म, व्यवहारिक कर्म और शास्त्रीय कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कुछ लोग प्रवृत्ति कर्म में दिन रात लगे हुए हैं, व्यवहारिक संसारिक कार्य को ही वो महत्व देते हैं और संसारिक कार्यों में ही निरंतर लगे रहते हैं, वह जन अविद्या रूपी कर्म में रत है. और जो लोग शास्त्रीय कर्म के साथ केवल कर्म पराण होकर उपासना में लगे रहते हैं, शास्त्रीय कर्मों के द्वारा ही कार्य करते रहते हैं, वह दोनों ही बोले कहां प्रवेश करते हैं. जो केवल कर्म में लगे रहते हैं वो तो अंधकार में, और जो विद्यारूपी कर्म में रहते हैं अर्थात उपासना में लगे रहते हैं वो घोर अंधकार, उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं. अभिप्राय है कि वह लोग जो केवल दिन रात उपासना आदि में रत रहते हैं, देवताओं की पूजा में, देवताओं के अर्चन में, देवताओं के यजन में और दिन रात, क्योंकि यह समस्त देवता जो नाना रूप से देव कार्य के अंदर, कभी बहुत से लोग हैं जो कभी किसी देवता की पूजा करते हैं, कभी किसी देवता की पूजा करते हैं, कभी किसी देव को मनाते रहते हैं और कभी उस आत्म स्वरूप के विषय में विचार नहीं करते. ऐसे जो लोग हैं कर्म और उपासना में लगे रहने वाले लोग, वह अंधकार में प्रवेश करते हैं. माने इंद्रिय पराण होकर के कर्म इंद्रियों के कारण, ज्ञानेन्द्रियों के कारण वह पुनः इस संसार में लौट करके आते हैं, जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त करते हैं, पुनः उनका आवागमन समाप्त नहीं होता, वो संसार चक्र के अंदर भ्रमित होकर घूमते ही रहते हैं. इसीलिए कहा कि ये दोनों ही जो केवल प्रवृत्ति मार्ग में है, कर्म करना है और वह कर्म पराण होकर दिन रात संसारिक कार्यों को, लौकिक कार्यों को ही महत्व देता है और उन कर्मों में महत्व देकर प्रवृत्ति, बहुत से लोग जिसे हम लोग कहते हैं कार्य कुशल, कर्म करने की उसकी जो कुशल शक्ति है, अपने कौशल्य को, कुशलता को वो केवल प्रयोग करता है संसारिक कार्यों के लिए. उसकी दक्षता, उसकी निपुणता, उसे जो महारत है वो केवल संसार में किस तरह से कितनी चतुराई से, कितनी योग्यता से, कितनी अच्छी तरह से वो अपने व्यवहारिक कामों को कर लेता है। केवल एक कार्य में रहता है, वह व्यक्ति तो अंधकार में प्रवेश करता है, परंतु उसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति मार्ग में भी, निवृत्ति मार्ग माने दैविक मार्ग, दैविक मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, जिस मार्ग पर शास्त्रीय बहुत से लोग हैं जो दिन रात अपना कुछ न कुछ कर्म अनुष्ठान के साथ जुड़े रहते हैं और अपने अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, देवताओं के यजन पूजन में लगे रहते हैं, उनकी ही उपासना में लगे रहते हैं, तो उपासनादि के द्वारा भी नाना प्रकार के हमारे यहाँ अनेक देव नहीं है, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, और 33 करोड़ देवताओं में से भी 33 देवता बड़े प्रधान माने गए हैं, 33 देवताओं में से भी कुछ लोग देव कार्यों के साथ, कुछ लोग देव कार्य में लगे रहते हैं और कुछ लोग पैतृक पितृ उपासना में, कोई पितरों की उपासना करते हैं, कोई देवताओं की उपासना करते हैं, देव पुत्र देव पितृ यजन पूजन में ही वो सर्वदा उसी में रत रहते हैं। ऐसे लोग और भी अंधकार में जाते हैं, कहने का अभिप्राय वह लोग इस आत्म तत्व को, स्वस्वरूप आत्मा को न जानने के कारण पुनः उन्हें अंधकार में आना पड़ता है, फिर से उसे जन्मना पड़ता है, फिर से उसे नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। श्रुति कहती है इसीलिए ईशावास्य उपनिषद को हमारे विद्वान लोग महापुरुष कहते हैं कि ये जो ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं, इनमें से प्रथम जो 7 मंत्र हैं वह तो ज्ञान के हैं, बाकी जो 11 मंत्र हैं वो कर्म और उपासना के मंत्र हैं। और इसी भाव को लेकर के एक तरफ कौरवों के पास जो सेना थी, बोले इसलिए महाभारत के साथ में भी गीता की जननी ईशावास्य उपनिषद को कहा गया है। गीता जी के 18 अध्याय हैं, बोले ये 18 अध्याय कहाँ से आए, ईशावास्य उपनिषद से ही ये 18 अध्याय आए हैं। और विद्वान लोग कहते हैं 18 असोहणी सेना में 11 असोहणी सेना कौरवों की तरफ है और 7 असोहणी सेना यह पांडवों के पक्ष में की ओर है। पांडवों के पक्ष में जो महारथ खड़े दिखाई देते हैं वो 7 हैं और कौरवों की तरफ 11 हैं। इस प्रकार इसकी तुलना संत लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, शास्त्रीय जन करते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि इन मंत्रों के द्वारा, जैसे कि पहले आपको कहा गया ईशावास्य विदम सर्वम, इस संपूर्ण जगत का आच्छादन कर दो, माने ढक दो इसको। आच्छादन कर देने का अभिप्राय कि ढक देना, बोले कौन सी दृष्टि से, ईशावास्य विदम सर्वम यद जगत्यां जगत, ये संपूर्ण जगत ईश्वर दृष्टि से आच्छादन कर दो, ढक दो, माने अपनी दृष्टि ऐसी हो कि जिस दृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा नजर नहीं आए। यहाँ द्वितीय द्वयम भयम बहुति, द्वैत की जहाँ भावना है, द्वैत का की जहाँ कल्पना है, वहीं भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद के ये जो 7 मंत्र हैं, जिन मंत्रों में ऐसी दृष्टि की बात कही है, कर्म करने के लिए भी बात कही गई है, परंतु कर्म और यहाँ इस मंत्र में अंधतम प्रवशन्ति ये विद्या उपासते अविद्या उपासते, कर्म उपासना में लगे रहोगे तो बोले कहाँ जाओगे। उपासना करो, चाहे पितृ लोगों की उपासना करो, चाहे देवताओं की उपासना करो, इस उपासना के द्वारा भी अंधकार में ही प्रवेश होना है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, कहीं अर्थ का अनर्थ न कर ले। ये मतलब नहीं है कि हम देवताओं की उपासना न करें। देवताओं की उपासना करते हुए भी उस अवस्था को, जिस अवस्था, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपनिषद वेद माता हमें इंगित कर रही है, इशारा कर रही है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। बोले उपासना करते हुए, जैसे विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण, और रामकृष्ण कार्य क्या करते थे, बोले काली के मंदिर में पुजारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, वो पूजा करते थे, उपासना ही तो करते थे, काली जी की ही तो उपासना करते थे। उपासना करते 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 उन्होंने परमहंस की स्थिति, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, रामकृष्ण परमहंस। परमहंस की स्थिति उन्होंने प्राप्त की, बोले किसके द्वारा, उपासना के द्वारा। तो उपासना से अभिप्राय ये नहीं है कि हमें इसका अर्थ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि हमें उपासना नहीं करनी चाहिए, पर उपासना करो। पर हम जो उपासना करते हैं, हमारी उपासना का लक्ष्य क्या होता है। जो हम भगवान का, परमात्मा का उपासना, दो तरह की होती है, एक सगुण साकार उपासना, एक निर्गुण निराकार उपासना। सगुण साकार उपासना में सगुण भगवान का ध्यान, सगुण साकार का ध्यान किया जाता है, उनका पूजन यजन किया जाता है। मधुसूदन सरस्वती सगुण साकार के उपासक थे, वो सगुण साकार रूप में उपासना करते थे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, भगवान ने पंचदेव उपासना में बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र की रचना की, भगवान शिव की और मां भगवती की, गणेश जी की और भगवान सूर्य देव की, भगवान विष्णु देव की, कितने जहां गए, गंगा जी गए तो गंगा जी की स्तुति गए, कि यमुना जी गए तो यमुना जी की स्तुति की, और जिस मंदिर में भगवती के गए तो वहां उन्होंने देवी के बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र की रचना करके उनकी उपासना की, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी सगुण साकार रूपों में भगवान के नाना प्रकार के स्तोत्र की रचना करके, और उनका और भगवान शंकराचार्य के चारों पीठों में उपासना होती है। बोले श्री विद्या की उपासना होती है, श्री विद्या की, श्री पीठ की स्थापना करके श्री विद्या की स्तुति की, और इस प्रकार उपासना का निसगुण साकार की उपासना माने सगुण रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, और सगुण रूप में भगवान की हम मानसी रूप से और बाह्य रूप से अर्चना करते हैं, और मानसिक रूप से पूजा करते हैं। पूजा उपासना करते करते, ध्यान करते करते, जब भगवान की हम का मानसिक रूप से पूजा करने बैठते हैं और उनको प्रकट करते हैं, बाह्य रूप से उनको साक्षात बिठा करके उनका पूजन करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान के चरण धोते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं और सुगंधित द्रव्यादियों से स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र आभूषण अलंकार आदि धराते हैं, उन्हें नैवेद्य भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, और ये सब पूजा अर्चन करते करते ऐसे समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं कि हम समाधि में चले जाते हैं। समाधि में चले जाते हैं अभिप्राय शरीर की सुध नहीं रहती। समाधि से अभिप्राय क्या है, समाधि से अभिप्राय ये है कि आपको अपने शरीर का भान ही न रहे, शरीर से आपकी वृत्ति हट करके भगवान में लग गई, भगवान के साथ जुड़ गई, और देहानुभूति उतनी देर आपको अपने शरीर का आभास नहीं रहा, अपने शरीर के सुख दुख का आभास नहीं रहा, प्राण का धर्म भूख प्यास का आभास नहीं रहा, और आपके प्राण, आपका मन की गति, आपकी बुद्धि की गति भगवान के चरणों में हुई। इस प्रकार आप सगुण रूप से भी भगवान का की उपासना करते हैं। और निर्गुण रूप, निर्गुण उपासना है कि अपने आप में, अपने अहम स्वरूप में स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसे अंग्रह ध्यान भी कहते हैं। स्वरूप का ध्यान, मैं कौन हूँ, और इस बात का को आप अपने अंदर मैं स्वरूप के स्वरूप का ध्यान करते हैं। इस प्रकार निर्गुण उपासना के द्वारा भी आप समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हैं। सगुण हो अथवा निर्गुण हो, दोनों रूप से भगवान परमात्मा के सगुण साकार, वो सगुण साकार भी है, वह निर्गुण निराकार भी है। वो निर्गुण निराकार होते हुए भी सर्गुण साकार है, और सर्गुण साकार होते हुए भी वो निर्गुण निराकार है। दोनों ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार भगवान के स्वरूप को वेद प्रतिपादन करते हैं। वेद भगवान, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, दोनों ही रूप वेद प्रतिपादित हैं। इस प्रकार भगवान की आप उपासना करके अब उपासना करते हैं, करना चाहिए। परंतु ये उपासना हम करते क्यों हैं? उपासना का जो उद्देश्य है हमारा, अंधेन तमसाव्रता अंधकार में वहां जाते हैं, बोले अंधतम प्रवशंति, वो अंधकार को प्राप्त होते हैं। वो अंधेरे में, अर्थात जन्म मृत्यु में अंधेरे में, घोरतम अंधेरे में उन्हें धकेल दिया जाता है, उस अंधकार में उन्हें जाना पड़ता है। बोली उसका भी प्राय क्या है कि हम जो उपासना करते हैं, हमारी उपासना का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हम उपासना कर रहे हैं? हमारी उपासनाएं चलती हैं, हमको यश मिले, विद्या मिले, धन मिले, दौलत मिले, पुत्र मिले, मान मिले, सम्मान मिले, लौकिक जो संसार की आपूर्ति के लिए, उस संसार जो हमें मिला है, वो संसार हमें इतना प्रिय है कि संसार में जो अप्राप्त है उसे हम अपनी उपासना अर्चना के द्वारा उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और जो हमें प्राप्त है, जिसे हम सोचते हैं कि हमको मिला हुआ है, हम चाहते हैं कि ये सब हमारा ज्यों का त्यों बना रहे। प्राप्त की रक्षा हो, अप्राप्त की प्राप्ति हो। केवल किस भाव से हम भगवान की उपासना करते हैं? यदि इनमें से कुछ छूटने लगे, कुछ हमसे अलग होने लगे, और यहां तक कि नारायण हम लोग वहां दौड़ेंगे जहां ये सुन लेंगे, कोई बता दे, बोले सिद्धि विनायक में इतनी जोर से भाग के हम लोग क्यों जाते? बोले भगवान सिद्धि विनायक का दर्शन करने से सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धि विनायक चले गए। पंचमुखी हनुमान जाने से सब मनोकामना पूरी होती है, हनुमान जी की तरफ दौड़ गए। मतलब हम उधर वहां जाते हैं जहां से हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलना चाहिए, वहां जरूर कुछ है। उस मंदिर में, उस देवता में बड़ी ताकत है, वो देवता हमको देता है। बोले क्या देता है? भोग देता है, वो किसी प्रकार का भी भोग हो। और भोगों की मन के अंदर लिप्सा है, भोग प्राप्ति की इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी चाह को लेकर हम भगवान की उपासना करते हैं। ऐसी जो उपासना है, जिन उपासनाओं में केवल केवल कामना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो उपासना में दिन रात लगे हुए हैं, तो भगवान तो एक ऐसे कल्पतरु कहते हैं कि भगवान मतलब कल्पतरु एक वृक्ष है, माने वो वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि जो उनके नीचे जाकर जिस प्रकार की कल्पना करता है, उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष एक पेड़ होते हैं, तो कहते हैं एक सामान्य कल्प वृक्ष, एक साधारण कल्प वृक्ष, और उस साधारण कल्प वृक्ष की ये विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? कि उस वृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करोगे वैसी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। एक पथिक राह चलने वाला राहगीर चलते चलते एक पेड़ दिखाई दिया, उसकी सघन छांव दिखाई दी और उसके नीचे जाकर बैठ गया। गर्मी के दिन था, मार्ग में थका हुआ था और गहरी छाया मिली पेड़ की और उसमें बैठा तो उसे बैठते बैठते मन में आया कि मैं थक गया हूं, यदि मुझे भोजन मिल जाता, यहां पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे उसने पानी की कल्पना की उसके सामने पानी भी आ गया और उसने पानी पी लिया। फिर उसने कल्पना की थोड़ी देर बैठ के, यदि भूख भोजन मिल जाता, यहां पर बैठ के भोजन करने को मिलता तो कितना आनंद आता। उसे भोजन भी मिल गया और भोजन करने के बाद आप जानते हैं सुस्ती आती है, आलस आता है, तो अलसा के कहने लगा यदि यहां बिस्तर आ जाता तो कितना अच्छा होता। उसके लिए बिस्तर भी हाजिर हो गया और बिस्तर आ गया, उस पर वो लेट भी लेटा। जब लेटा उसके मन में एक बात आई कि देखो जब मैं यहां पर आया था ना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहां पर, जो जो जैसा जैसा मैं चाहता गया वैसा वैसा मुझे सब कुछ यहां मिलता गया, कहीं इस पेड़ में कोई भूत न हो जो मुझे खा जाए। जैसे उसने मन में कल्पना की कि इस पेड़ में कहीं भूत न हो मुझे खा जाए, भूत भी आ गया और उसे खा भी गया। तो ये एक साधारण कल्प वृक्ष की बात मैंने कही, ये सामान्य साधारण पेड़ की बात बताई, परंतु भगवान ऐसे कल्प वृक्ष नहीं है, याद रखना है। भगवान एक ऐसे कल्प वृक्ष नहीं है कि हम जैसी जैसी कल्पनाएं करें वो हमारी सारी पूरी होती जाए। भगवान ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि कल्प हमारी इच्छाओं को पूरा करने से पहले वो देखते भी हैं कि ये इसकी पात्रता है या नहीं है, इसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसे कल्प वृक्ष नहीं है कि जो तुम इच्छा करोगे वो सब तुम्हें मिलता चला जाए। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चाह तो कुछ रखी थी पर हुआ नहीं, तो हमारे अंदर बड़ा अविश्वास भी हो जाता है। परंतु मैं उपनिषद ये कहना चाहती है कि उपासना के माध्यम से जो दिन रात इस प्रकार की कामनाओं को अपने हृदय में रखकर और भगवान की उपासना में लगे हैं, करते तो वो देवताओं की उपासना है, करते तो वो पितरों की उपासना है, भगवान को इस बात में कोई परहेज नहीं है, ईश्वर को कोई इस बात का परहेज नहीं कि कौन किस रूप में उपासना कर रहा है। ये यथावाम प्रबदंते तथास्ते भजाम्यहम्, जो जिस भाव से जैसी भावना करके, यादृश भावना, जिसकी जैसी भावना है उस भावना से जैसे जो मेरे को ध्यान रहा है, मेरी उपासना कर रहा है, भगवान कहते हैं मैं उसको उसी प्रकार से मिल जाता हूँ, उसको मैं वैसे ही प्राप्त होता हूँ। इसलिए जो पितृ के रूप में भज रहा है, कोई देवता के रूप में भज रहा है, कोई भूत के रूप में भज रहा है, कोई भैरों के रूप में भूज रहा है, जो जिस रूप में से भी भजन कर रहा है, उपासना कर रहा है, भगवान मिलते तो हैं, परंतु याद रखना उससे उसकी इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं, उसे स्वर्ग पर्यंत का भोग मिल सकता है, देवता पर्यंत तक का भोग मिल सकता है, परंतु उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, उसको उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए उपनिषद ये कहती है कि हम जिस अंधकार में, जिस अविद्या रूपी और विद्या रूपी अंधकार में लगे हुए हैं, इसीलिए कहा आगे अगले मंत्र से और स्पष्ट करते हुए इसी कर्म उपासना के फल को बताया। कर्म का फल और उपासना का फल, कर्म है अविद्या और उपासना है विद्या। विद्या उपासना को कहते हैं और कर्म को अविद्या कहा गया है। अन्य देवाहुर विद्याया दाहुर विद्याया इति सुश्रम धीराणाम ते नश्चंदी विचक्षे। विद्या से अर्थात देवताओं के ज्ञान से, विद्या देवताओं को कहा गया, उसका फल बताया, अविद्या रूपी कर्म का फल बताया कि इन दोनों का फल क्या है। जो विद्वानों के द्वारा, विद्वानों ने इन दोनों के फल की जो व्याख्या की गई है, विद्या की कर्म की जो व्याख्या की और उपासना की जो व्याख्या की है, विद्या की जो व्याख्या की उसका फल जो बताया, बोले क्या बताया है,